सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के सातवें दिन। अभी तक हमने चैतन्य चरितामृत के प्रथम सात अध्याय चर्चा किए हैं। सबसे पहले अध्याय का शीर्षक है मंगलाचरण, दूसरा अध्याय हमने देखा चैतन्य तत्व निरूपण, तीसरा चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण, चौथा अध्याय था चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के गुह्य कारण, पांचवा अध्याय था नित्यानंद तत्व निरूपण, छठा अध्याय अद्वैत तत्व निरूपण और सातवां अध्याय पंचतत्व निरूपण। और जो मंगलाचरण में 14 श्लोक जिनका उल्लेख किया था कविराज गोस्वामी ने, इन सात अध्यायों में उन 14 श्लोकों का विस्तार किया है कविराज गोस्वामी ने। आज हम आठवां अध्याय चैतन्य चरितामृत का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आठवें अध्याय का शीर्षक है चैतन्य लीला वर्णन कारण, कि जैसे कोई लेखक जब किताब लिखता है तो उसमें लेखक बताता है कि मैं ये किताब क्यों लिख रहा हूं, तो उस प्रकार से अभी सातवें श्लोक सातवें अध्याय तक तो केवल जो है वो मंगलाचरण ही चल रहा था, तत्व निरूपण किया उन्होंने। और उसके बाद अभी आठवें अध्याय में यहाँ पर बता रहे हैं कविराज गोस्वामी कि मैंने ये ग्रंथ क्यों लिखा है। तो उसमें वो प्रारंभ करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी अपरंपार है। हे न कृपामय चैतन्य न भजे ये जन सर्वोत्तम हैले ओ तारे असुरे गणन, कि चैतन्य महाप्रभु के समान कृपामय और इस संसार में कोई नहीं है, और यदि कोई व्यक्ति भले ही क्यों कितना प्रतिष्ठित क्यों ना माना जाता हो इस संसार में, लेकिन फिर भी यदि वो चैतन्य महाप्रभु को नहीं भजता है तो वह व्यक्ति जो है वो उसे असुर ही समझना चाहिए। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार विचार करिते चित्ते पाबे चमत्कार। वो तक यदि आपको विचार ही करना है तो आप विचार कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु कितने कृपालु है, उसके ऊपर आप चिंतन मनन कीजिए, और जब विचार करेंगे तब आपके मन में जो है वो आपको अद्भुत लगेगा, एक चमत्कार जैसा लगेगा, ऐसा कविराज गोस्वामी कहते हैं। अभी कृष्ण नाम के बारे में कविराज गोस्वामी बताते हैं कि यदि अपराध से युक्त हम लोग भगवान का श्रवण और कीर्तन करते हैं, भगवान कृष्ण का नामोच्चारण करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। बहुजन्म कर यदि श्रवण कीर्तन तबुतन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसा हम लोग भगवान का नाम बहुत जन्मों तक भी लेते रहेंगे अपराध युक्त, तो बहुत जन्म निकल जाएंगे लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम हमें प्राप्त नहीं होगा, ऐसा कविराज गोस्वामी हमें सूचित करते हैं। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया कबू प्रेम भक्ति ना देन राखे या लुकाया। यदि कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति चाहता है तो भगवान कृष्ण दे देंगे, कोई व्यक्ति मुक्ति भी चाहता है तो भगवान कृष्ण उसे मुक्ति भी प्रदान कर देंगे, लेकिन भक्ति को भगवान कृष्ण अपने पास छिपा कर रखते हैं, वो इतने आसानी से नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि यदि भगवान कृष्ण अपनी भक्ति प्रदान करते हैं तो अपने आप को उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं, भगवान कृष्ण बेचे जाते हैं, इसलिए भक्ति इतनी आसानी से भगवान कृष्ण नहीं प्रदान करते हैं। तो ये भगवान का नाम हमने लेना तो चाहिए लेकिन अपराध भावना से नहीं। हे न प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा जगाई मदाई पर्यंत अन्य का कथा। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो कृष्ण नाम के बारे में हो गया कि उसमें अपराध रहेगा तो बहुत जन्म आप लग जाएंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इन्होंने वही प्रेम यथा तथा ऐसे ही बांट दिया है, और जगाई मधाई पर्यंत अन्य का कथा, बाकी लोगों के बारे में तो क्या कहना, जगाई मधाई तक ये भगवान का प्रेम जो है वो पहुंच गया है। इस प्रकार से भगवान के नाम में जो है वो अपराध हमें लग सकते हैं, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इनके जो नाम है उसमें कभी भी अपराधों की गणना नहीं होती है। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप उच्चारण करने से पहले पंचतत्व मंत्र करके प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो उसमें जो है वो अपराध कभी नहीं गणना होती। और मूढ़ लोक शून चैतन्य मंगल चैतन्य महिमया ते जानी बे सकल। कबीर गोस्वामी अभी वृंदावन दास ठाकुर इनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हे मूर्ख लोगों, आपको यदि चैतन्य महाप्रभु की महिमाओं को यदि समझना है तो आप वृंदावन दास ठाकुर इनके द्वारा लिखे चैतन्य भागवत इनको आप सुनिए। कृष्ण लीला भागवते कोहे वेद व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन वेद व्यास इन्होंने किया हुआ है, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के सही रूप में यदि व्यास है तो वो वृंदावन दास ठाकुर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। क्योंकि ये ग्रंथ कोई मनुष्य द्वारा लिखा हुआ नहीं है, वृंदावन दास ठाकुर उसके लेखक है, लेकिन वास्तव में वक्ता श्री चैतन्य चैतन्य महाप्रभु स्वयं उन्होंने उस उनको अपनी लीलाओं का स्फुरण कराया हुआ है और उन्होंने उसे लिखा हुआ है। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार ऐसे ग्रंथ करीते हो तारीला संसार। ऐसे वृंदावन दास इनके चरणों में मैं कोटि वंदन प्रणाम करता हूं, और क्योंकि उन्होंने इस सारे संसार को जो है वो उद्धार किया हुआ है अपने इस ग्रंथ को देकर। जो नारायणी थी, जो श्रीवास ठाकुर उनकी भांजी थी नारायणी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद के रूप में ग्रहण किया था और नारायणी के ही पुत्र थे ये वृंदावन दास ठाकुर। ये वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य मंगल लिखा है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। कविराज गोस्वामी अपने पुस्तक में वृंदावन दास ठाकुर द्वारा जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम चैतन्य मंगल ही वर्णन करते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि लोचनदास ठाकुर इन्होंने पहले से ही एक ग्रंथ लिखा था जिसका शीर्षक था चैतन्य मंगल, इसलिए बाद में जाके जो वृंदावन दास ठाकुर है उनके किताब का नाम बदली किया गया, वो हो गया चैतन्य भागवत। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तो अगाध है, अपरंपार है, असीमित है, और उनका यदि वर्णन करते गए तो बहुत विशाल ग्रंथ हो जाएगा। और खास करके कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे और नित्यानंद प्रभु के प्रति इनका बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए नित्यानंद प्रभु की कई सारी लीलाएं उन्होंने वर्णन की है, इसलिए उनका ग्रंथ जो है वो काफी बड़ा हो गया। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो संन्यास के पश्चात की लीलाएं हैं उसे वृंदावन दास ठाकुर वर्णन नहीं कर पाए, तो इसलिए उनके आशीर्वाद लेके मैं उन लीलाओं को वर्णन करना प्रारंभ कर रहा हूं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से नित्यानंद तत्व महिमा के वर्णन में हमने देखा था कि किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर इनके सपने में आते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि आप वृंदावन जाइए, छठा अध्याय इसमें जिसमें हमने छठा या ना पांचवा अध्याय में हमने नित्यानंद तत्व निरूपण जो देखा था, तो उसमें ही सपने में आते थे नित्यानंद प्रभु कविराज गोस्वामी के, और उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया हुआ था। तो अभी जो वृंदावन में गए हुए हैं तो वृंदावन का वर्णन करते हैं कि वृंदावन में राधा गोविंद जी जो उनका मंदिर था वो बहुत ही राजसी थाड़बाट में वहां पर सेवा हुआ करती थी, और उनके एक मुख्य सेवक थे उनका नाम था हरिदास पंडित। और हरिदास पंडित इनके गुणों का वर्णन करते हैं कि कितने वो महान भक्त थे। सुशील सहिष्णु शांत वदन्य गंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर, ऐसे उनका वर्णन किया जाता है। सबार सम्मान करता करेन सबार हित कौटिल्य मात्सर्य हिंसा ना जाने तार चित्त। वो कहते हैं कि वो सबका सम्मान देने के लिए हमेशा सतर्क रहते थे, सबका हित चाहते थे, बिल्कुल कूटनीति और मात्सर्य यानी ईर्ष्या उनके हृदय में लेश मात्र भी नहीं थे। तो ऐसे गदाधर पंडित ये ऐसे हरिदास पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के पांच तत्वों में एक थे गदाधर पंडित, उन गदाधर पंडित के शिष्य हुए अनंताचार्य, और अनंताचार्य के शिष्य थे हरिदास पंडित। आप ऐसा चार्ट मैप कर सकते हैं, गदाधर पंडित के शिष्य है अनंताचार्य और अनंताचार्य के शिष्य हुए हरिदास पंडित। और इस प्रकार से ये जो गोविंद जी के पुजारी थे हरिदास पंडित, ये बार बार विनती किया करते थे कविराज गोस्वामी को कि आप चैतन्य महाप्रभु की जो शेष लीला है उनको तो प्रस्तुत कीजिए कम से कम। तो हरिदास पंडित इन्होंने बार बार विनती की, और न केवल हरिदास पंडित, उनके साथ साथ सदैव चैतन्य मंगल का पाठ सुनते थे और उनकी कृपा से अन्य सारे वैष्णव भी जो है वो सुना करते थे। तो कविराज गोस्वामी इसलिए लिखते हैं कि तेहो अति कृपा करी आज्ञा कैला मोरे गौरांगेर शेष लीला वर्णि बारे तारे, कि उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से मुझे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने का जो है वो आदेश दिया है और उसके कारण मैं इसे लिख रहा हूं। तो लिखने का प्रमुख कारण अध्याय का शीर्षक ही क्या है कि चैतन्य लीला वर्णन कारण, प्रभुपाद जी ने भाषांतर किया हुआ है, लेखक का कृष्ण तथा गुरु के आदेश प्राप्त करना। तो अभी हरिदास पंडित इन्होंने जो विनती की थी उसे कविराज गोस्वामी आज्ञा के रूप में अपने शिरोधार धारण करते हैं। मोर आज्ञा करीला सबे करुणा करिया तन से बार बोली लिखी निर्लज्ज हैया, इन सभी भक्तों ने कृपा करके मुझे चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिखने का एक आदेश दिया हुआ है और उनके आज्ञा से मैं चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूं। जब वैष्णव की आज्ञा मुझे प्राप्त हो गई तब मेरे आराध्य देव मदन गोपाल या मदन मोहन इनके चरणों में मैं आज्ञा मांगने के लिए गया, और जब मैं वहां पर दर्शन करी कहलू चरण वंदन गोसाई दास पुजारी करे चरण सेवन, जब मैं मदन मोहन के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया वहां पे गोसाई पुजारी थे वो भगवान की चरण सेवा में लगे हुए थे, तो जब मैंने भगवान से आज्ञा मांगी तो तुरंत ही वहां पर भगवान मदन मोहन के गले से एक हार है वो खिसक कर नीचे आ गया, और जो ही ये घटना घटी सारे वैष्णव जन वहां पर जो भी थे वो जोर से आशीर्वाद देते हुए चिल्लाए हरि बोल हरि बोल, और जो पुजारी गोसाई था उन्होंने वो भगवान का प्रसादी हार मेरे गले में डाल दिया। आज्ञा माला अमर होइला आनंद तहाई करुण ए ग्रंथेर आरंभ, और इस प्रकार से उस माला जो मिली वो मैं भगवत आदेश के रूप में स्वीकार किया और इस ग्रंथ का मैं प्रारंभ किया है। ए ग्रंथ लिखा है मोरे मदन मोहन अमर लिखन ये न शुकेर पठन, ये ग्रंथ तो एक्चुअली मतलब वास्तविक रूप से देखा जाए तो मदन मोहन ही मेरे से लिखा रहे हैं, मैं तो हूं वो केवल एक तोते के समान इसे जो है वो दोहरा रहा हूं, इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं। इस प्रकार से आठवां अध्याय में कविराज गोस्वामी ने ये ग्रंथ उन्होंने क्यों लिखा कि मदन गोपाल जी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया मदन मोहन जी का, और दूसरा हरिदास पंडित और अन्य कई भक्तों की जो विनती थी या जो आज्ञा थी उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा हुआ है। उसके पश्चात नौवां अध्याय प्रारंभ होता है जिसका शीर्षक है भक्ति कल्प वृक्ष। कविराज गोस्वामी यहाँ पर एक एनोलॉजी देते हुए समझाते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो आए थे वो स्वयं एक माली भी थे, उन्होंने एक बीज सिंचित किया था और उसको उसका वृक्ष हो गया, उसे फल आ गए कृष्ण प्रेम के, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उन फलों को वितरित भी कर रहे हैं, उस पेड़ को सिंचन भी कर रहे हैं और स्वयं खा भी रहे और बांट भी रहे हैं। मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेमा मरतरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानाम यस्तम चैतन्यम आश्रये, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की मैं शरण लेता हूं जो स्वयं कृष्ण प्रेम रूपी यह वृक्ष है, इसके माली है और इनके फलों के प्रदाता तथा भोक्ता दोनों है, इन फलों का वो भोक्ता भी है और प्रदाता भी है। तो क्या है एनोलॉजी, इसको विस्तार से इस भक्ति कल्प वृक्ष को नवे अध्याय में कविराज गोस्वामी इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। प्रभु कहे आमी विश्वम भरना मधरी नाम सार्थक है यदि प्रेमे विश्व भरी, महाप्रभु सोच रहे थे कि मेरा नाम विश्वंभर रखा गया है, यदि इस सारे विश्व को मैं कृष्ण प्रेम से नहीं भर दूं तो मेरा नाम विश्वंभर जो है वह सफल नहीं हो जाएगा, इसलिए मुझे इस सारे विश्व को कृष्ण प्रेम के नाम कृष्ण प्रेम से भरना होगा। एतचिंती लैला प्रभो मालाकार धर्म नवद्वीपे आरंभिला फलोद्यान कर्म। इस प्रकार से चिंतन करके चैतन्य महाप्रभु ने मालाकार मतलब एक माली का जो वो धर्म स्वीकार किया और नवद्वीप में उन्होंने एक फलोद्यान खोल दिया है। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते अनि भक्तिकल्प तरु रूपिला सिंची इच्छा पानी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस भक्ति रूपी कल्प वृक्ष को इस पृथ्वी पर लेके आए और स्वयं इसके माली बने हुए हैं और उन्होंने जो बीज बोया है वो और उसे अपनी इच्छा रूपी जल से सिंचन किया है। तो जल क्या है इस वृक्ष के लिए? चैतन्य महाप्रभु की इच्छा। जय जय श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेम पुर भक्ति कल्प तरुते हो प्रथम अंकुर। तो अभी जो बीज सिंचित किया हुआ है कृष्ण प्रेम रूपी, अभी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी इच्छा से उससे जल से सिंचित किया हुआ है, तो अभी वो बीज से अंकुर आएगा। तो सबसे पहला अंकुर हो श्री माधवेंद्र पुरी, इनकी जय हो जय हो। केवल भक्ति वृक्ष है और उन्हीं में भक्ति का प्रथम बीज जो है वो अंकुरित हुआ है। तो पहला अंकुर हो गया श्री ईश्वर पुरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला आपने चैतन्य माली स्कंध उपजिला। इसके बाद जो है वो बीज अभी जो अंकुरित हुआ था उसको पुष्टि मिलती है ईश्वरपुरी के रूप में। तो माधवेंद्रपुरी पहला अंकुरित रूप है और उनके शिष्य जो ईश्वरपुरी है वो उसको पुष्ट करते हैं और फिर उस भक्ति कल्प वृक्ष के स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो माली है वो उसका तना बनते हैं। तना मतलब स्कंद, स्कंद बनते हैं। अभी इस वृक्ष के मूल कौन है? वृक्ष है तो अभी उसके मूल भी फैलेंगे, तो आप ऐसा वृक्ष का चित्र बना सकते हैं और चित्र में इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से सिंचन हुआ है उस बीज का। प्रथम अंकुर जो है वो माधवेंद्रपुरी, अंकुर की पुष्टि करते हैं ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु उसका प्रमुख स्कंद, वो चैतन्य महाप्रभु और उसके मूल है, जड़ है। तो नौ जड़ यहां पर बताए जाते हैं। मैं केवल बंगाली श्लोक पढ़ूंगा, हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। ये नौ मूल कौन है? परमानंद पुरी आर केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी आर ब्रह्मानंद भारती हो गए चार, विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानंद श्री नरसिम्ह तीर्थ आर पुरी सुखानंद हो गए नौ। ए नव मूल निकसिल वृक्ष मूले, यही नव मूल वृक्ष करीला निश्चले। इन नव मूलों ने इतना गाढ़ा कर दिया है इस वृक्ष को, तो अभी वो बिल्कुल निश्चल हो गया है। और इन नव मूल में सबसे प्रमुख जो मूल कौन सा है? मध्य मूल परमानंद पुरी महाधीर अष्टदिके अष्ट मूल वृक्ष कैल स्थिर। परमानंद पुरी जो है वो इस वृक्ष के प्रमुख मूल है, परमानंद पुरी के रूप में आपको याद रखना होगा, मुख्य मूल है और बाकी आठ मूलों को उन्होंने स्थिर बनाए रखा हुआ है। स्कंदेरे ऊपरे बहु शाखा उपजिला, ऊपरी ऊपरी शाखा असंख्य हैला। जो प्रमुख स्कंद है श्री चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर कई सारी शाखाएं और उनकी अनंत उपशाखाएं फिर आगे चल के आ जाती है। तो इन शाखाओं से सैकड़ों उपशाखाएं आती है और कितनी उपशाखाएं आती है इसकी तो कोई गणना ही नहीं है। वृक्षर ऊपरे शाखा होइल दुई स्कंद एक अद्वैत नाम अरनित्यानंद। तो जो प्रमुख वृक्ष था चैतन्य महाप्रभु का जो स्कंद है उससे प्रमुख दो अभी विभाग निकलते हैं। एक विभाग होता है, दो स्कंद निकलते हैं एक स्कंद से। एक स्कंद का नाम है अद्वैताचार्य, दूसरे स्कंद का नाम है श्री नित्यानंद प्रभु। इस प्रकार से दो प्रमुख स्कंद अभी यहां पर निकले हुए है। और एक और उदाहरण देते हैं कविराज गोस्वामी समझाने के लिए औदुम्बर वृक्ष का। औदुम्बर वृक्ष यन फले सर्व अंगे, यही मत भक्ति वृक्ष सर्वत्र फल लागे। जिस प्रकार से औदुम्बर वृक्ष आपने देखा होगा कि हर एक टहनी में आगे आगे चल के उसे जो औदुम्बर फल लगता है, उसी प्रकार से जो वृक्ष अभी लगाया हुआ है चैतन्य महाप्रभु ने उसे फल यहाँ वहां लगते हैं। मूल स्कंदेर शाखा आर उपशाखा गणे लागिला ये प्रेम फल अमृत के जिने। चैतन्य महाप्रभु जो मूल तना है, मूल स्कंद है और अतएव जो शाखाओं तथा उपशाखाओं में जो फल लगे हुए हैं उनका स्वाद जो है वो अमृत से भी कई गुना बढ़कर है। पाकिला ये प्रेम फल अमृत मधुर विला ये चैतन्य माली नाही लय मूल। जो पके हुए अमृत के समान फल है श्री चैतन्य महाप्रभु बिना कुछ मूल्य मांगे इन फलों को मुफ्त में जो है वो बांट रहे हैं। मांगे वाना मांगे के हा पात्र वा अपात्र इहारो विचार नहीं, जाने दे या मात्र। चैतन्य महाप्रभु जो है वो देखने रहे कि कोई मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, कोई पात्र है या अपात्र है, केवल विचार नहीं कर रहे और केवल उनका एकमात्र उद्देश्य है देते रहना। इसलिए उनका नाम है दाता शिरोमणि, केवल वो देते रहते हैं, देते रहते हैं। अलौकिक वृक्ष करे सर्वेंद्रिय कर्म स्थावर हैया धरे जंगमेर धर्म। या कैसा अलौकिक वृक्ष है, वृक्ष साधारणता से हम लोग देखते हैं कि वो एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन ये भक्ति प्रेम का कल्पतरु कैसा वृक्ष है, ये स्थिर होना चाहिए, वृक्ष स्थिर होता है, लेकिन ये जो वृक्ष है धरे जंग मेरा धर्म, ये चलता फिलता वृक्ष है, यहां वहां जा रहा है, क्योंकि ये भक्ति प्रेम जो है वो यहां वहां बांट रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एकला माला कर आमे कहां कहां याब, एकला वा कत फल पाड़िया विलाप। मैं अकेला माली हूं, कितने स्थानों में मैं जा सकता हूं और कितने फलों को तोड़ के मैं बांट सकता हूं, अकेले तोड़ के इनको विचलित करना यह बहुत परिश्रम का कार्य है। मुझे संदेह है कि कुछ लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं, इसलिए ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति को मैं आज्ञा देता हूं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का ये स्वीकार करें और इसे जो है वो सर्वत्र सर्वत्र जाके इसे वितरित करें। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का वितरण सारे विश्व में करो और जिससे सारे लोग इन फलों को खाकर अंततः जो है वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिस व्यक्ति ने इस भारत भूमि में जन्म लिया है उस व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपना जन्म सार्थक करे, इस फल को खाए और करे पर उपकार, इस जो फल है उन सब फलों को जो है वो सबको बांटे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भारत में जन्मे हुए हम सभी को आज्ञा दी है कि इन फलों को आप बांटिए। यही आज्ञा कैल यदि चैतन्य मालाकार परम आनंद पैल वृक्ष परिवार। और जो वृक्ष के शाखा टहनिया जो परिवार है, वृक्ष के वंशज है जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, महाप्रभु से यह प्रत्यक्ष आदेश पाकर वह प्रसन्न हो गए और यहाँ वहां वो है वो कृष्ण भक्ति का प्रदान करने लगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि ये जो शाखा है उसमें से इस्कॉन भी एक शाखा है चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष की, और हम भी किस प्रकार से इन वृक्षों को, वृक्ष के जो फल है उन फलों को हम भी जो है वो बांट रहे हैं। इस प्रकार से नौवा अध्याय जो है वो पूर्ण हो जाता है। आगे फिर जो तीन अध्याय है 10, 11 और 12 जिनके शीर्षक है, सबसे पहला नौवा अध्याय तो हो गया हमारा भक्ति कल्प वृक्ष, उसके पश्चात 10वां अध्याय आता है उसका शीर्षक है प्रमुख चैतन्य स्कंद, जो चैतन्य तना है वो और उनकी अलग अलग शाखाएं। 11वां अध्याय है नित्यानंद शाखा और 12वां अध्याय है अद्वैत शाखा। तो 10वें अध्याय में कविराज गोस्वामी वर्णन प्रारंभ करते हैं, चैतन्य गोसाई यत पार्षद चय गुरु लघु भावतार ना हो या निश्चय। कि चैतन्य महाप्रभु को जो पार्षद है उनको तो मैं अभी गणना करने जा रहा हूं, लेकिन उसमें कोई ऊंचा है या कोई नीचा है ऐसा भेद मत रखिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के कई सारे पार्षद थे। तो अभी आप केवल थोड़ा सा लिखने का काम कीजिए, 5 मिनट या 3-4 मिनट में हमारा 10वां अध्याय पूर्ण हो जाएगा। इसमें केवल चैतन्य महाप्रभु के जो अलग पार्षद है उनके नाम लिखे गए हैं, उन नामों को केवल आपको जो है वो पढ़ना है। तो उसका एक विभाजन कविराज गोस्वामी स्वयं बताते हैं कि वो विभाज किस प्रकार से किया हुआ है उन्होंने, आगे चल के वो बताएंगे आपको, पढ़ते पढ़ते वो समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए उसको मैं एक ब्रेकअप किया हुआ है। अध्याय 10 आदिलीला का श्लोक संख्या 8 से लेकर के 123 तक, फ्रॉम श्लोक नंबर 8 to 123 उड़ीसा और बंगाल के भक्तगणों का वर्णन है, उड़ीसा और बंगाल के भक्त, और उसमें 90 शाखाएं वर्णित की गई है। श्लोक संख्या 8 से लेके 123 तक उड़ीसा और बंगाल के भक्तों की 90 शाखाएं वर्णन की गई है। तो उसमें फिर शिवाई शिवास पंडित, रमाई पंडित, कई 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 शाखाएं हैं, सब भाई कौन कौन किसके भाई है, आचार्य रत्न एक शाखा है, वक्रेश्वर पंडित एक शाखा है, ऐसे कई सारे शाखाओं को आप पढ़ लीजिए। 8 से लेकर के 123 उड़िया और बंगाल के भक्त, 90 शाखा है। उसके पश्चात 124 से लेकर 151 तक, फ्रॉम श्लोक नंबर 124 to 151, यहां पर जगन्नाथपुरी के भक्तों की शाखाओं का वर्णन है, जगन्नाथपुरी के भक्त, और उसमें 37 शाखाओं का वर्णन है, 37 ब्रांचेस ऑफ चैतन्य ट्री। फ्रॉम श्लोक नंबर 124 to 151, जगन्नाथपुरी भक्त एंड 37 ब्रांचेस। श्लोक नंबर 152 to 158, वाराणसी के भक्तगणों का वर्णन है, और वाराणसी के भक्तों में केवल 3 शाखाएं हैं, एक है चंद्रशेखर आचार्य, दूसरे है तपन मिश्रा, और तीसरे है तपन मिश्रा के पुत्र रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनका वर्णन आता है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो वाराणसी के भक्तों में केवल 3 प्रमुख शाखाएं हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये अध्याय में, हम हमारा समय बचाएंगे, केवल शाखाओं के नाम आपको पढ़ना है, लेकिन आपके पास एक विभाजन आ गया है कि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा वर्णन चल रहा है। फ्रॉम श्लोक नंबर 8 to 123, उड़ीसा एंड बंगाल डिवोटीज 90 ब्रांचेस। श्लोक नंबर 124 to 151, जगन्नाथपुरी डिवोटीज 37 ब्रांचेस। 152 to 158, वाराणसी के भक्तगण 3 ब्रांचेस। ये हो जाता है 10वां अध्याय। उसके पश्चात आता है 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक है नित्यानंद शाखा। तो नित्यानंद शाखाएं, उनका भी वर्णन कविराज गोस्वामी इस प्रकार से करते हैं, तस्य श्री कृष्ण चैतन्य सत्प्रेमामर शाखिनः ऊर्ध्वस्कन्धावधूतेन्दो शाखा रूपान गणान नमः। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम रूपी इस अमर वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा है। तो हमने कहा कि 2 प्रमुख शाखाएं हैं, चैतन्य स्कंद की, एक है नित्यानंद, दूसरी है अद्वैत। तो ये नित्यानंद शाखा है सबसे ऊपरी शाखा, और उनकी उपशाखाओं को मैं प्रणाम अर्पण करता हूं। तो आप पूरे इस अध्याय में जो है वो 76 शाखाओं का वर्णन किया है कविराज गोस्वामी ने। तो 76 शाखाएं आपको मिलेगी, और निष्कर्ष में कविराज गोस्वामी बताते हैं, अनर्गल प्रेम सबार चेष्टा अनर्गल, प्रेम दिते कृष्ण दिते धरे महाबल। इन सब शाखाओं के बारे में कहते हैं कि ये सारे भक्त जो है वो अबाध अनंत कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीमित शक्ति रखते हैं। अनर्गल प्रेम सबार चेष्टा अनर्गल, उनका प्रेम भी अवरोध रहित है और उनके प्रयास भी जो है वो अनर्गल बिना अवरोध के है। प्रेम दिते कृष्ण दिते धरे महाबल, ये कृष्ण प्रेम और कृष्ण शक्ति का संचालन कर रह सकते हैं, ऐसे ये उनके पार्षद है। और उन पार्षदों के नाम यदि कोई व्यक्ति केवल सुनता भी है और पढ़ता भी है तो उनकी कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, ऐसे ये दिव्य सारे भक्त है। और 12वां अध्याय आता है अद्वैत शाखा, जो मूल स्कंद देखा हमने 10वें अध्याय में चैतन्य स्कंद, उनके 11वां अध्याय में नित्यानंद शाखा, और 12वें अध्याय में अभी अद्वैत शाखा और गदाधर शाखा भी, इनका भी वर्णन आता है, अद्वैत और गदाधर शाखा। तो 1 से लेकर के 78 श्लोक तक, फ्रॉम श्लोक नंबर 1 to 78, चैप्टर नंबर 12 के फ्रॉम श्लोक नंबर 1 to 78 अद्वैत शाखाओं का वर्णन है, और उसमें 38 शाखाएं वर्णित की गई है, 38 ब्रांचेस ऑफ अद्वैत मेन ब्रांच। एंड श्लोक नंबर 79 to 96, 79 से लेके 96 श्लोक तक गदाधर पंडित इनकी शाखाओं का वर्णन है और 33 शाखाएं उनकी वर्णित की गई है। तो ये हमारा अध्याय 12 भी हो जाता है। फ्रॉम श्लोक नंबर 1 to 78 अद्वैत शाखा, 38 शाखाएं, 38 ब्रांचेस एंड श्लोक नंबर 79 to 96 गदाधर पंडित इनकी 33 शाखाएं इनका वर्णन किया गया है। अभी हम लोग प्रारंभ करते हैं 13वां अध्याय चैतन्य महाप्रभु का जन्म वर्णन। प्रभुपाद जी ने भाषांतरित किया हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु जन्म वर्णन, ये अध्याय का शीर्षक। एतक कहिला ग्रंथारंभ मुख्य बंध, एबे कहे चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अभी तक जो, जैसा हमने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु जो आदि लीला है उसके दो प्रमुख विभाग है, पहले 12 अध्याय और 13 से लेकर के 17 अध्याय। तो पहले 12 अध्याय भी पूर्ण हो जाते हैं हमारे, ये दो केवल क्या है, ये मुखबंध है पूरे पूरे आदि लीला, पूरे पूरे ग्रंथ का, आदि मध्य अंत सारे पूरे 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 ग्रंथ का ये पहले 12 अध्याय जो है वो मुखबंध है। मुखबंध का अर्थ क्या होता है, इसे कहते हैं अमुख या प्रस्तावना है, जैसे हमने पहले दिन भी चर्चा की थी। तो पहले 12 अध्याय प्रस्तावना है। तो इस प्रकार से हमारे 12 अध्याय हो गए। कविराज गोस्वामी कहते हैं अभी मैं चैतन्य महाप्रभु के काल क्रम से लीलाओं का वर्णन करूंगा। तो श्लोक संख्या 8 से लेकर के 18 तक संपूर्ण चैतन्य लीला एक दृष्टिक्षेप में कविराज गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं, जो हमने पहले दिन ही ली है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर 48 साल तक रहे, उसमें से पहले 24 साल उनके गृहस्थाश्रम की लीला है जो आदि लीला से, आदि लीला नाम से जाने जाते हैं, और जो बचे हुए 24 साल है वो शेष लीला नाम से जाने जाते हैं, उसमें से पहले जो 6 साल है संन्यास लीला के पश्चात वो मध्य लीला के रूप में जाने जाते हैं, और जो बचे हुए 18 साल है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे वो अंत्य लीला के रूप में जाने जाते हैं। और उस अंत्य लीला में भी दो विभाग हो सकते हैं। उस अंत्य लीला में भी जो पहले 6 साल है, 18 में से जो 6 साल है उसमें चैतन्य महाप्रभु यहाँ वहां भक्तों को मिला करते थे, आदान प्रदान हुआ करता था, और उसके पश्चात जो 12 साल है अंत्य लीला के आखिरी, उसमें चैतन्य महाप्रभु केवल प्रेम रस का आस्वादन किए कुछ गिने चुने भक्तों के साथ, और भक्ति भक्तों को भी वो नहीं मिलते थे। इस प्रकार से जो है वो कविराज गोस्वामी ने एक दृष्टिपात दिया है। और श्लोक संख्या 19 से लेके 43 19 to 43 इसमें संपूर्ण आदि लीला, जो संपूर्ण आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, तीनों लीलाओं को सारांश रूप में बताया गया है। श्लोक संख्या 19 से लेकर 43 19 to 43 संपूर्ण सारांश इस पूरे ग्रंथ का हमें मिल जाता है यहां पर। तो हमें पता है कि हमने देखा था चैतन्य तत्व निरूपण में कि, और जो आदि लीला का हमारा चौथा और तीसरा अध्याय है, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के अंतरंग और बहिरंग, एक्सटर्नल रीजंस एंड इंटरनल रीजंस, उसमें चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण इस धरातल से पुनः चले जाते अपने धाम में, उनके अंदर अतृप्त इच्छाएं थी 3, उसके कारण उन्हें अवतरित होना ही था, और उसके साथ साथ युगावतार का भी समय हो गया था और अद्वैताचार्य भी प्रार्थना कर रहे थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अवतरण लिया। कोन वांछा पूर्ण लागी व्रजेंद्र कुमार अवतीर्ण होते मने करीला विचार। श्लोक संख्या 52 है ये 13वें अध्याय में, कि कौन सी अपनी एक इच्छा अपूर्ण थी चैतन्य महा व्रजेंद्र कुमार भगवान श्री कृष्ण की एक इच्छा अपूर्ण थी और उसको पूरा करने के निश्चय चैतन्य उसको पूरा करने का कृष्ण सोचते हैं, और उसके पहले अपने जो बड़े बड़े भक्त हैं अपने बुजुर्ग उनको भेजते हैं, श्री सच्ची जगन्नाथ श्री माधवपुरी केशव भारती आर श्री ईश्वरपुरी अद्वैताचार्य आर पंडित श्रीवास आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास। तो ये सब जो भक्त हैं वो चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं उम्र में, इतना हमें याद रखना चाहिए। और कहां कहां कौन कौन भक्त कहां कहां जन्म लेते हैं उतना सब वर्णन करते हैं। जगन्नाथ मिश्र वर पदवी पुरंदर नंद वसुदेव रूप सद्गुण सागर। जो जगन्नाथ मिश्र थे उनको एक पदवी मिली थी जिसका शीर्षक था पुरंदर, और सारे अच्छे गुणों के वो सार थे, खान थे। तारो पत्नी शची नाम पतिव्रता सती यारो पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। उनकी पत्नी थी जगन्नाथ मिश्रा, उनका नाम था शची और वो पतिव्रता थी और उनके पिता का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। तो इस प्रकार से प्रभुर आविर्भाव पूर्व यत वैष्णव गण अद्वैताचार्य स्थाने करेन गमन। सारे वैष्णवगण महाप्रभु के अवतरण से पहले अद्वैताचार्य इनके घर पे मिला करते थे और मिलके क्या किया करते थे। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति र बढ़ाई। कि इस प्रकार से सारे वैष्णव मिलके अद्वैताचार्य जो है वो उन्हें भगवत गीता और भागवत इनका जो है वो वर्णन किया करते थे। सारे एकत्रित मिलके गीता भागवत इनका वर्णन करते थे और भक्ति का जो है वो कविरा अद्वैताचार्य हमेशा वर्णन किया करते थे। तार संगे आनंद करे वैष्णवे रगण कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। सारे वैष्णव इस प्रकार से घर में एकत्रित मिलके कृष्ण कथा किया करते थे, कृष्ण पूजा किया करते थे और नाम संकीर्तन लेते थे। किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुख विषय निमग्न लोक देखी पाए दुख। हालांकि वो कृष्ण कीर्तन और पूजा में आनंद लेते थे लेकिन फिर भी जब वो देखते थे कि इतने सारे लोग कृष्ण से बहिर्मुख हुए हैं और विषयों में निमग्न है, इसको देख के अद्वैताचार्य इनको बहुत दुख होता था। लोकेर निस्तर हेतु करे न चिंतन के मते ए सब लोकेर होइबे तारण। अद्वैताचार्य हमेशा विचार में निमग्न रहते थे कि इन सब लोगों का उद्धार कब और कैसे होगा। यदि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यदि आए तो ही ये संभव है। इस प्रकार से हमें पता है हमने अद्वैत तत्व निरूपण आपको तुरंत अध्याय याद करना होगा कि कौन से अध्याय में हमने अद्वैत तत्व निरूपण देखा था। छठे अध्याय में हमने अद्वैत तत्व निरूपण देखा था। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से अद्वैताचार्य ने गंगा जल और तुलसी के पत्र इनसे उनके शालिग्राम शिला को सिंचित किया था और भगवान को अवतरण के लिए प्रार्थना की थी। तो वही वर्णन यहाँ पे होता है कि अद्वैताचार्य ने भगवान को अवतरित कराने के लिए पूजा शुरू कर दी और जोर से उन्हें पुकारने लगे और इस प्रकार से जो है वर्णन आता है कि किस प्रकार से अद्वैताचार्य की पूजा से भगवान संतुष्ट हो गए। चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पहले 8 छोटी कन्याओं का जन्म होता है, शची माता और जगन्नाथ मिश्र इनके यहां पर। और जो 8 कन्याएं थी वो जन्म के पश्चात तुरंत उनका देहांत हो जाता है। जगन्नाथ मिश्र और शची माता बहुत ही अधिक दुखी हो जाते हैं। उन्होंने फिर भी भगवान की पूजा करना अर्चना करना छोड़ा नहीं, लेकिन हमें एक पुत्र चाहिए और पुत्र की अभिलाषा से पुनः उन्होंने भगवान की आराधना शुरू रखी। इसके पश्चात जो बलदेव के स्वयं विस्तारित स्वरूप है वो उनके यहाँ पे जन्म लेते हैं जिनका नाम था विश्वरूप। तो ये विश्वरूप इनका जन्म होता है। जो संकर्षण मूल संकर्षण है उनके ही ये विस्तारित रूप है बलदेव जी। और हमने संकर्षण तत्व या नित्यानंद तत्व निरूपण वो देखा हुआ है, वो भी आप तुरंत याद कर सकते हैं कि कहां पे आपने नित्यानंद तत्व निरूपण देखा था, 5वें अध्याय में। तो इस प्रकार से अभी जो मूल संकर्षण है उनके एक अंश विश्वरूप के रूप में चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में यहाँ पर अभी अवतरित होते हैं। सारे निवासी और जगन्नाथ मिश्र और शची माता सारे आनंदित हो जाते हैं। और आनंदित होने के पश्चात अभी ऐसा नहीं है कि अपनी वांछा पूर्ण हो गई, इच्छा पूर्ण हो गई, अभी भगवान की आराधना करके छोड़ दो, ऐसा नहीं। उन्होंने करेन विशेष सेवन, वो उन्होंने राधा गोविंद इनकी और विशेष सेवा जो है वो प्रारंभ की। इस प्रकार से जनवरी महीना 1485 चैतन्य महाप्रभु उनके माता पिता के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शची माता और जगन्नाथ मिश्र इनका संवाद प्रारंभ हो जाता है। मिश्र कहते हैं कि तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी और लक्ष्मी जैसा बन गया है और पता नहीं कहां कहां से लोग यहां पर आ रहे हैं, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही है। शची माता कहती है कि जी हाँ, मैंने भी देखा कि कई सारे लगता है कि ये देवता यहाँ पर हमारे घर के बाहर आ रहे हैं और गर्भ में इस शिशु को कई सारे प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कि हाँ, मैंने एक सपना देखा और सपने में देखा मैंने कि भगवान एक अंश के रूप में मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। शायद कोई बहुत ही बड़ा दिव्य पुरुष हमारे यहाँ पे जन्म लेने वाला होगा। फिर इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र के हृदय से शची माता के हृदय में और वहां से फिर शची माता के गर्भ में चले जाते हैं भगवान और कई सारे अलग अलग देवी देवता भी आके उन शिशु को प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी जब कृष्ण माता देवकी के गर्भ में थे तब एक अध्याय आता है जिसका शीर्षक है गर्भ स्तुति। तो गर्भ में अलग अलग देवी देवता प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं ईश्वर कृष्ण है उनको भी कई देवी देवता गर्भ में ही प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। इस प्रकार से 13वां महीना शुरू हो गया, माता शची गर्भवती थी लेकिन शिशु के बाहर आने के कोई आसाद ही नहीं दिख रहे थे। जगन्नाथ मिश्रा थोड़े चिंतित हो जाते हैं और नीलांबर चक्रवर्ती जो शची माता के पिताजी वो एक एस्ट्रोलॉजर थे उनको बुलाया जाता है और उनको पूछा जाता है कि क्या है। तो वो भाकित करते हैं कि किस प्रकार से एक शुभ क्षण आएगा और उसकी यह बालक राह देख रहा है अपने जन्म के लिए। तो पूरे कैलकुलेशन उनकी जन्म कुंडली बताई गई है कि किस प्रकार से सिंह राशि में चंद्र है और सिंह लग्न है और उच्च ग्रह गण, इस प्रकार से षडवर्ग और अष्टवर्ग सारे शुभ चिन्ह है। लेकिन हो गया जाता है कि अचानक से चंद्र ग्रहण हो जाता है, है पूर्णिमा, फल्गुन महीने की पूर्णिमा, लेकिन पूर्णिमा है लेकिन फिर भी चंद्र ग्रहण लग गया है। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हुए लिखते हैं, अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्रेर आर कोन प्रयोजन। कि इस प्रकार से अभी अकलंक गौर चंद्र जिनमें कोई कलंक नहीं है ऐसे गौर चंद्र अभी जन्म लेने वाले हैं। तो ये सकलंक चंद्र, जो चंद्र जिसके ऊपर कितने सारे कलंक है, दाग धब्बे, उस चंद्र का क्या काम अभी, क्योंकि अब अरे हमारे गौर चंद्र जन्म ले रहे है तो उस चंद्र का कुछ प्रयोजन नहीं है। इसलिए वो राहु उस चंद्र को ग्रह लेता है और उनका ग्रहण हो जाता है। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि सब अशुभ लक्षण वहां पर प्रस्तुत होते हैं, इसलिए सारे लोग जो है वो कुछ शुभ करना चाहिए इसके पीछे भागते हैं। इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति जो है वो कृष्ण और हरि इनके नाम उस समय ले रहे थे। और जब सारी दुनिया, सारा विश्व, हिंदू मुस्लिम सारे लोग इस प्रकार से गंगा स्नान कर रहा था, कोई कोई भगवान का नाम ले रहा था, इस प्रकार से सारे विश्व में जब भगवान हरि का नाम भर जाता है, जगत भरिया लोक बले हरि हरि सही क्षण गौर कृष्ण भूमे अवतरे। जिस प्रकार से सारा विश्व जब हरि हरि ध्वनि कर रहा था, सारा विश्व आप्लुत हो गया हरि ध्वनि से, उस समय भगवान श्री गौर कृष्ण, कृष्ण ही गौर रूप में इस धरातल पर अवतरित हो जाते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो अभी जब महाप्रभु का अवतरण हो गया है, सारा विश्व आनंदित हो उठता है, सब 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 लोग आनंद से भर जाते हैं। और कविराज गोस्वामी की रचना यहां पर पढ़ने लायक है। नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि कृपा करी हईला उदय पाप तम हईला नाश त्रि जगत तेरा उल्लास जग भरी हरि ध्वनि होय। नदिया उदयगिरी, नदिया को कहा जाता है उदयगिरी, मतलब सूर्य की किरण सर्वप्रथम वहां पर आती है। नदिया उदयगिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि कृपा करी हईला उदय। उस उदयगिरी में जहां पर सूर्य सबसे पहले किरण अपनी पहुंचाता है वहां पर अभी गौर चंद्र श्री गौर हरि इनका जन्म हुआ है। पाप हतम हईला नाश त्रि जगत तेरा उल्लास, उनके जन्म से क्या हुआ है, हरि ध्वनि जग भरी हरि ध्वनि हो यह सारे विश्व में अभी हरि ध्वनि फैल गई है और सारा जगत का पाप सारे जगत का जो है वो तमह रूपी अंधकार जो है वो अभी नाश हो रहा है। इस प्रकार से सारा जगत आनंद हो जाता है, सारे भक्त खुशी हो जाते हैं, उनकी आनंद की सीमा नहीं रहती। इस प्रकार से अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर उन्होंने जोरदार कीर्तन प्रारंभ किया है। अद्वैताचार्य इनके घर पर कोई समझ में भी नहीं कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये लोग इतना आनंदित होके नृत्य क्यों नृत्य कर रहे हैं। वो लोगों ने गंगा में स्नान किया, अद्वैताचार्य ने यथाशक्ति अपने मन में ही जो है वो कई सारे ब्राह्मणों को दान दिया है। हरिदास ठाकुर इनको समझ में आ जाता है कि कुछ तो विशेष उद्देश्य है अद्वैताचार्य इनके कृति से मुझे लग रहा है। तीनों जगत आनंदित हो जाते हैं, कई सारे ब्राह्मण और ब्राह्मणिया अलग अलग उपहार लेके चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। और केवल ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहीं, कई सारे ऊंचे लोक के देवी देवता अभी ब्राह्मण और ब्राह्मणियों के वेश धारण करते हुए शिवजी, उनकी पत्नी गौरी, सरस्वती, इंद्र, इंद्र की पत्नी शची, रंभा, अरुंधति, गंधर्व, सिद्ध, चारण, ये सब जो है वो नृत्य कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हुए चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। कई सारे किन्नरगण जिन्हें प्रोफेशनल डांसर्स कहा जाता है वो अभी आके नवद्वीप में उन्होंने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया था। कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था, केवल आनंद ही आनंद अभी शची माता और जगन्नाथ मिश्र इनके घर में जो है वो छाया गया था। इस प्रकार से जब जन सेलिब्रेशन जात कर्म जो है वो संस्कार होते हैं, चंद्रशेखर आचार्य और श्रीवास ठाकुर वो दोनों जगन्नाथ मिश्र के यहाँ पे आते हैं और ये दोनों वहां पर जो है वो जात कर्म संस्कार कराते हैं। कौन आते हैं, चंद्रशेखर आचार्य और श्रीवास ठाकुर। जगन्नाथ मिश्र उसके पश्चात कई सारे ब्राह्मणों को वहां पे जो गायक थे उनको, जो लोग नृत्य कर रहे थे, जो गरीब लोग थे उनको जो है वो कई सारा दान देते हैं, संपूर्ण अपना भंडार खुला कर देते हैं। और कई सारी महिलाएं वहां पर आ जाती है, श्रीवास ठाकुर उनकी पत्नी जिनका नाम है मालिनी, चंद्रशेखर आचार्य इनकी पत्नी, ये सारे महिलाएं अभी जा रही है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन लेने के लिए। अद्वैताचार्य इनकी पत्नी जिनका नाम है सीता ठकुरानी, वो अभी एक पालकी में बैठ के उन्हें लाया जाता है और कई सारे जो मौल्यवान सोने चांदी जवाहरात और कई सारे शुभ वस्तुएं, दुर्वा और कुश घास चंदन, ये सब लेके जो है वहां पर नए जन्म हुए शिशु उनके यहाँ पे जो है वो लाए जाते हैं। एक माँ के स्वभाव से सारे लोग वहां पर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और क्योंकि अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठकुरानी वो देखती है कि इस शिशु को किसी की नजर नहीं लगे, इसलिए उनका वो नामकरण वहीं पे करती है। वो कहती है इनका नाम होगा निमाई। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्रा उन्होंने सीता ठकुरानी उनका भी स्वागत किया, उनका आदर आतिथ्य भी वहां पर जो है किया जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु एक नीम के वृक्ष के नीचे जन्म लिए थे, इसलिए उनका नाम होता है निमाई। और सीता ठकुरानी वो भी कुछ अशुभ चिन्ह इन्हें न लगे इसके लिए उनका नामकरण करती है निमाई। इस प्रकार से शची माता जगन्नाथ मिश्रा उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है और उनका जो घर है वो अभी आनंद से भरा हुआ है और उनका आनंद दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। जगन्नाथ मिश्र ये एक आदर्श गृहस्थ और एक आदर्श वैष्णव भी थे। जितना भी संपत्ति उनके यहाँ पे भगवान की कृपा से आया करता था वो सब उन्होंने ब्राह्मणों और वैष्णवों और भगवान की सेवा में जो है वो लगा दिया। नीलांबर चक्रवर्ती वो देखते हैं कि ये जो बेटा जन्म लिया हुआ है उसकी पूरी वो कुंडली बनाते हैं और उसके शरीर के जो अंग है उनसे ही समझ जाते हैं कि एक बहुत बड़े दिव्य और महापुरुष ने यहाँ पर जन्म लिया है। पूरी कुंडली बनाते हैं और इस बालक का भविष्य वो उनके माता पिता को बताते हैं और वो कहते हैं कि संपूर्ण तीनों लोकों का उद्धार यह बालक जो है वो करेगा, यह सबके ऊपर अपनी कृपा का वर्षाव करेगा। और इस प्रकार से कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उनका जो है वो जन्म है उसका यहाँ पे विस्तार से वर्णन किया हुआ है। और तीनों लोगों का उद्धार करेगा ऐसी जब भविष्यवाणी की गई तब सारे परिवार के सदस्य ही नहीं पूरा नवद्वीप गांव जो है वो आनंद से फल फूल जाता है। और इस प्रकार से कविराज गोस्वामी निष्कर्ष देते हुए इस अध्याय के अंत में कहते हैं, ऐछे प्रभु शची घरे कृपाय कैला अवतारे यही इहा कर ये श्रवण, गौर प्रभु दयामय तारे होयन सदय सेई पाए ताहर चरण। फलश्रुति बताते हुए कहते हैं कि इस तरह ऐछे प्रभु शची घरे कृपाय कैले अवतरे, कृपा पूर्वक चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से शची माता के घर पर अवतरित हुए हैं, यही इहा कर ये श्रवण। जो भी व्यक्ति इस लीला को श्रवण करता है सुनता है, गौर प्रभु दयामय तारे होयन सदय, जो गौरांग महाप्रभु है वो अत्यंत कृपालु है और उस व्यक्ति के ऊपर वो कई सारी अपनी कृपा बरसाते हैं और उस कृपा का परिणाम क्या होता है, सेई पाए तहर चरण, वो शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए हमने इस कथा को सुना है ताकि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल हमें भी प्राप्त हो सके। लेकिन इसके आगे कविराज गोस्वामी चलते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा भी कोई होगा जो इसे नहीं सुनेगा, पाई या मनुष्य जन्म ये ना सुने गौर गुण है ना जन्म तार व्यर्थ होइल, पाई या अमृत धुनी पिए विष गर्त पानी जन्मी या से केने नाही मैल। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पाई या मनुष्य जन्म ये ना सुने गौर गुण, जिस मनुष्य ने मतलब जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म ले लिया है लेकिन ये ना सुने गौर गुण, जो गौरांग महाप्रभु के गुणों का वर्णन नहीं सुनता है ना जन्म तार व्यर्थ होइल, उस व्यक्ति का मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ ही है। पाई या अमृत धुनी पिए विष गर्त पानी, पाइया अमृत धुनी, अमृत की नदी यहाँ पर बह रही है चैतन्य लीला के रूप में। जो व्यक्ति इस अमृत धुनी का पान नहीं कर रहा है लेकिन क्या ले रहा है, पिए विष गर्त पानी, जो गड्ढे में थोड़ा विष जो पड़ा हुआ है उस विष को यदि कोई व्यक्ति ग्रहण कर रहा है अमृत का पान नहीं कर रहा है, जन्मी या से केने नाही मैल, उस व्यक्ति ने जन्म लेके फायदा नहीं, वो व्यक्ति जीते जी उस व्यक्ति ने मर जाना चाहिए जो चैतन्य महाप्रभु को जो है वो गुणों को नहीं सुन रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे अलग छंद में कविराज गोस्वामी ने जो है वो बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु के जन्म का वर्णन किया है। और आखिरी श्लोक में जो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आखिरी श्लोक चैतन्य चरितामृत का कॉमन होता है,
श्री रूप रघुनाथ पदे या रास चैतन्य चरित अमृत कहे कृष्ण दास। यहाँ पर जो अलग छंद में अभी वर्णन हो रहा है तो उसी छंद को आगे लेते हुए कविराज गोस्वामी इस अध्याय को विराम देते हैं। श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास इहा सबार श्री चरण शिरे वंदी निज धन जन्म लीला गाइला कृष्ण दास की। श्री चैतन्य नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप और रघुनाथ दास इन सब के चरणों में मैं मेरे सिर से वंदन करता हूं जो मेरे निज धन है और चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला का मैं वर्णन करता हूं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इस प्रकार से जो है वो चैतन्य महाप्रभु की लीला का यहाँ पर वर्णन हो जाता है अति अद्भुत तरीके से कविराज गोस्वामी यहाँ पर उनका वर्णन किए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी आदि लीला के 13 अध्याय इनका वर्णन कर लिया है। इसके पश्चात और आदि लीला के 4 अध्याय बाकी है। इस प्रकार से हमारी आदि लीला संपूर्ण हो जाएगी। जो 4 अध्याय है इसमें चैतन्य महाप्रभु 14वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला, 14वें अध्याय में बाल्य लीला, 15वें अध्याय में पौगंड लीला, 16वें अध्याय में कैशोर लीला और 17वें अध्याय में यौवन लीला। तो इस प्रकार से बाल्य, पौगंड, किशोर और यौवन ये लीलाओं का वर्णन होगा और इस प्रकार से हमारी आदि लीला जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे भक्त इन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए जो अमृत धुनी है इसको सुन रहे हैं, इसका आस्वादन कर रहे हैं। इसके आस्वादन को और बढ़ाने के लिए हमने ये एक परीक्षा रखी है CCC चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट। इसमें यदि आपने अभी तक भाग नहीं लिया है तो इसमें आप भाग ले सकते हैं जिससे आपको जो है वो आप बहुत अच्छे से इसका चरवण करेंगे और इससे एक आस्वादन आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे रसगुल्ला अच्छा लगता है तो रसगुल्ला हम लोग जब चबाते हैं और जितना अधिक चबाते हैं उतना आस्वादन बढ़ जाता है, उसी प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इसका आस्वादन होना चाहिए और पुनः पुनः इसका चरवण होना चाहिए। तो पुनः पुनः चरवण और आस्वादन के लिए हमने ये परीक्षा रखी है। आप इस परीक्षा में भाग लीजिए। कई सारे लोग आश्चर्य की बात है, कई भक्त मैं जब देख रहा था कोई दुबई से, कोई कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, बंबई, यहाँ वहां से भक्तगण इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। तो हम सारे नासिक के भक्तों को भी यह विनती करते हैं कि वो भी इस परीक्षा में भाग लीजिए और महाप्रभु की इस लीला का आप बहुत अच्छे से आस्वादन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।